प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, पुस्तक दूसरी, लेक्चर नंबर 38। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्, सुरसुरनरपतिवंद्यने प्रविनष्टघाती कर्मने प्रणमन करूं धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वैशेष तीर्थंकर ने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान द्रुग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदुवणी हो मनुज क्षेत्रे वर्ततारि हंतने हरे हंतने सौ सिद्धने नमस्करण करिए रीते गणधरने अध्यापकोने सर्व साधु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम बामिने प्राप्ति करूं साम्यनि जे नाथि शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य रुक्ति टीका लिखी हुई है। इन पर जो गुरुदेव कांजी स्वामी के प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से अभी ये दूसरी पुस्तक चल रही है, प्रवचन सुधा भाग दो, उसके पृष्ठ संख्या 1 पर हम आ गए हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं, देखो आरंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य 21 नंबर की गाथा का हेडिंग अभी पढ़ेंगे हम। अथ ज्ञान स्वरूप प्रपंचम, सौख्य स्वरूप प्रपंचम च क्रम प्रवृत्त प्रबंध द्वयेन अभिदधाति। तत्र केवलिन अतीन्द्रिय ज्ञान परिणतत्वात् सर्वं प्रत्यक्षं भवति इति विभावयति। हाँ देखो, पेज नंबर 1 पर चल रही है दूसरी पुस्तक, पृष्ठ 1, अभी जो हमने हेडिंग पढ़ा है उसका गुजराती देखो। पेज नंबर 2 पर वो हरिगीत के ऊपर लिखा है, हवे ज्ञान ना स्वरूप नो विस्तार, प्रपंच ने उसका विस्तार, ज्ञान स्वरूप प्रपंच में ज्ञान स्वरूप का विस्तार और सुखना स्वरूप नो विस्तार क्रमे प्रवर्तता वे अधिकारों द्वारा कहे छे। अनेक ज्ञान का एक सुख का ऐसा अधिकार बताएंगे। तेमा प्रथम, पहले तो ज्ञान स्वरूप का विस्तार बताएंगे। अतीन्द्रिय ज्ञान रूपे परिणमेला हुआ थी, यहाँ लिखा न, तत्र केवलिना अतीन्द्रिय ज्ञान परिणतत्वात् सर्वं प्रत्यक्षं भवति, बधु प्रत्यक्ष छे एम प्रकट करे छे। पहले गाथा पढ़ेंगे हम। परिणम दोखलुणाणम पच्चखा सौवदौ अपच्छाया सोणेव ते विजानदि उग्गह पूवाहि किरियाहि परिणम मानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायः स नैव तान् विजानाति अवग्रहपूर्वाभिक्रियाभिः प्रत्यक्षचे सद्रव्यपर्यय ज्ञानपरिणमनारने जाने नहि ते ते मने अवग्रह इहादि क्रियावड़े। इसका अन्वयार्थ देखते हैं। हाँ, आपके लिए दूसरी पुस्तक देती हूँ मैं। कौन सा भी अपनी गाथा 21 नंबर है ना, इसमें शायद 22 होगी। परिणम दो खलु नानम, ये जरा उनके लिए रखना। इस कुछ तो मिलेगा ना, वो जैसे आचार्य की टीका वगैरह उसमें है विस्तार से, बाकी बात नहीं होगी। प्रवचन इसमें है ना, वो जिस वो टीका नहीं है, नहीं वो तो तीसरा भाग होगा ना। हाँ, मूल प्रवचन सार ग्रंथ वहाँ कहीं होगा अंदर, वहाँ पर है। लेफ्ट साइड में होगा कहीं पर। ये फोटो यहाँ रखिए बेड पर। हाँ, वो नियम सार के बाजू में होगा, वो अभी बाहर निकाले ना, वो प्रवचन सार ही होगा शायद। कौन सा है वो? हाँ, निकाला था। दोनों रखना उधर। हाँ, अभी देखते हैं हम यहाँ पर अन्वयार देखेंगे। खलु एटले खरेखर, ज्ञानम परिणाम मानस्य, परिणाम मानस्य के परिणाम मानस्य, परिणाम मानस्य होना चाहिए ना। एक मिनट, परिणाम पच्चखा सोने जान, परिणाम मानस्य है ना गाथा में, देखो ना, परिणाम मानस्य, उन्होंने परिणाम मानस्य लिखा है, वो परिणाम चाहिए, एक मात्रा नहीं चाहिए। खरेखर ज्ञानम परिणाम मानस्य, ज्ञान रूपे इतले केवल ज्ञान रूपे परिणमता, केवली भगवान ने ज्ञानम परिणम मानस्य ने ज्ञान रूपे परिणमता केवलगी भगवान ने, सर्वद्रव्य पर्यायः सर्वद्रव्य पर्यायो प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष छे, प्रत्यक्ष जानते हैं, सह ते तान यानी तेमने यानी उन सब द्रव्य पर्यायों को अवग्रह पूर्वाभि क्रियाभिः नैव विजानाति, अवग्रह आदि क्रियाओं थी नथी जानता। ये अवग्रह आदि में क्या लेना है आपको मालूम है? धारणा, बस। ये किसके भेद है? मति ज्ञान के। तो अवग्रह पूर्वक जानना होता है, मति ज्ञान में जो जानना होता है, अवग्रह यहाँ अवाय और धारणा, इस तरह से उसका हत हो। तो यहाँ क्या कहते हैं, अवग्रह आदि क्रियाओं थी नहीं जानता। तो कैसे जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं। वो कैसा जानना होता है, परोक्ष जानना होता है। ये प्रत्यक्ष और स्पष्ट। टीका, इंद्रियों ने आलंबी ने, यानी जहां इंद्रियों का निमित्त बनता है, अवग्रह यहां अवाय पूर्वक क्रम थी केवली भगवान जानता न थी। मति ज्ञान में ये जो जानना होता है, पहले अवग्रह होता है फिर यहां अवाय वगैरह, ये क्रम से जानना हो। और जिसको हम कहेंगे पहले तो उसने जान लिया, ग्रहण हो गया, परंतु अभी निर्णय तक पहुंचने के लिए बीच में वो यहां भी आती है, क्योंकि निर्णय तक पहुंचने के लिए उसमें और उत्सुकता हो गई ना अधिक जानने की, फिर यहां, फिर निश्चित जान लिया ये क्या है, क्योंकि आकाश में कुछ कुछ सफेद दिख रहा था, ये पताका है क्या, कुछ बगुले की पंक्ति है, ऐसा उनके प्रश्न मन में शंका आई। तो उन्हें शंका ने, वो संशय वाला नहीं समझना, ये जिज्ञासा हुई विशेष जानने की, तो उन्होंने नक्की जान लिया कि ये बगुले की पंक्ति है, तो अवाय हो गया। अब कालांतर में विस्मरण न हो, जैसे हम कहते सेव करते ना आप वैसे, तो उसको धारणा कहते हैं। देखो, इंद्रियों थी आलंबी ने, अवग्रह यहां अवाय पूर्वक क्रम थी केवली भगवान जानता न थी, परंतु स्वयमेव समस्त आवरण ना क्षय थी, क्षयनी क्षणिज समस्त आवरण ने पांचों ही ज्ञान आवरण का क्षय हो गया है, उसी समय अनादि अनंत अहेतुक अने असाधारण ज्ञान स्वभाव ने ज कारणपणे ग्रहवाती। अब यहाँ क्या है, तो ज्ञान स्वभाव कब से है, तो अनादि अनंत है। अहेतुक जो स्वभाव होता है वो किसी के निमित्त से नहीं होता, वो अहेतुक होता है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो है ही, किसी निमित्त के कारण वो स्वभाव बन गया ऐसा कभी नहीं होगा, इसको कहते हैं अहेतुक। तो ज्ञान स्वभाव कैसा है, तो अनादि अनंत है, अहेतुक है और असाधारण है, अन्य द्रव्य में नहीं है, जीव में वो विशेष है, इसलिए उसको असाधारण स्वभाव कहा। ज्ञान स्वभाव ने ज कारणपणे ग्रहवाती, तुरंत ज प्रकटता, यानी जिस समय क्षय हुआ उसी समय जो प्रकट हुआ, क्या केवल ज्ञान, केवल ज्ञानोपयोग रूप थई ने परिणमे छे, यानी अभी वो कौनसा उपयोग है उनका, केवल ज्ञान रूप उपयोग रूप होकर परिणमित हो रहे। माटे तेमने समस्त द्रव्य क्षेत्र काल अने भावनु अक्रमे ग्रहण होवाती। समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अर्थ होता है सभी द्रव्यों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्व के भी और पर के भी, तो समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावनु अक्रमे ग्रहण होवाती, यानी एट ए टाइम ग्रहण होवाती, युगपद ग्रहण होवाती। हम आप कैसे जानते, क्रम से जानते हैं, और उनका जानना अक्रम से होता है, एट ए टाइम होता है। हुआ थी समक्ष संवेदन ने, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान ने, समक्ष यानी प्रत्यक्ष, आलंबन भूत समस्त द्रव्य पर्यायों प्रत्यक्ष छे, यानी उनका ज्ञान प्रत्यक्ष है तो सारे द्रव्य पर्याय भी उनके लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अभी इसी का भावार्थ बता रहे, जेनी आदि नथी तेमज अंत नथी। अनादि अनंत बताए ना, जेनु कोई कारण नथी अने जे अन्य कोई द्रव्यमान नथी, इसके लिए ये एक वाक्य बताया, जेनी आदि नथी तेमज अंत नथी, इसके लिए क्या शब्द आया था, अनादि अनंत। जेनु कोई कारण नथी उसके लिए क्या, अहेतुक। अने जे अन्य कोई द्रव्यमान नथी, असाधारण है ना। एवं ज्ञान स्वभाव ने ज उपादेय करीने, केवल ज्ञान ने उत्पत्ति ना बीज भूत, यानी ज्ञान स्वभाव से ही ये केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। शुक्ल ध्यान नामना स्वसंवेदन ज्ञाने जारे आत्मा परिणमे छे, त्यारे तेना निमित्ते सर्वघाती कर्मों क्षय थई जाय छे। क्या कहना चाहते हैं, केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीज भूत, बीज भूत यानी उसका जो है बीज से वृक्ष उगता है, तो केवल ज्ञान होने से पहले क्या हुआ था, तो शुक्ल ध्यान हुआ था। श्रेणी आरोहण होता है, क्षपक श्रेणी चढ़ता है, तो पहले में पहले कौन सा शुक्ल ध्यान होता है याद है? पहला पृथक्त्व वितर्क विचार, फिर बारहवें के अंत में एकत्व वितर्क अविचार। तो उसके कारणभूत यानी उसके फलस्वरूप क्या होगा, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, यही कह रहे। देखो केवल ज्ञान ने उत्पत्ति ना बीजभूत, यानी केवल ज्ञान बाद में उत्पन्न हुआ, उसके पहले क्या हुआ था, तो कहते शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान क्या है, तो शुक्ल ध्यान नामना स्वसंवेदन ज्ञान है। स्वसंवेदन ज्ञान को ही यहाँ शुक्ल ध्यान कहा। देखो ये ज्ञान यानी जानना और जानते रहना, वो ध्यान हो जाता है। और किसको जानते रहे? स्वसंवेदन, अपने को ही जानते रहे। स्वसंवेदन ज्ञाने, आपकी पुस्तक में मूल पुस्तक अभी निकाल के रखे लक्ष्मी बेन ने? नहीं, यहाँ से लक्ष्मी ने निकाली अंदर से। ये ऊपर से निकाली उन्होंने अभी। अभी अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ी हमने, अभी उसी का भावार्थ भी उसमें होगा ना, क्या नहीं है? भावार्थ भी है उसमें अंदर। हाँ देखो भावार्थ फिर पढ़ते हैं। हाँ देखो केवल ज्ञान को कैसा बताया है, ये ज्ञान स्वभाव को कैसा कहा था ऊपर टीका में, अनादि अनंत अहेतुक और असाधारण। अनादि अनंत है ना, क्या स्वभाव, स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो कायम रहता है, अनादि से पाया जाता है, अनंत काल तक रहता है, ऐसा नए से उत्पन्न नहीं होता है और कभी विनष्ट भी नहीं होता, इसलिए उसको अनादि अनंत कहा। भावार्थ में उसी को क्या कहा, देखो जेनी आदि न थी यानी शुरुआत न थी। देखो कोई पर्याय है, अभी केवल ज्ञान की आदि है, परंतु ज्ञान स्वभाव की आदि नहीं है, ज्ञान स्वभाव तो अनादि से। तो जेनी आदि न थी तेमज अंत न थी। दूसरा पॉइंट क्या, जेनु कोई कारण न थी, उसके लिए ऊपर अहेतुक शब्द आया था, क्योंकि स्वभाव में कोई कारण नहीं होता है, स्वभाव तो स्भाव है, वो स्वयं सिद्ध है, अनादि से है, द्रव्य में पाया ही जाता है। कोई पर्याय होती है तो उसमें हम कारण की बात करते हैं कि ये निमित्त कारण है, ये उपादान कारण है, निज शक्ति वगैरह, क्योंकि पर्याय नहीं उत्पन्न होती है, उसमें कारण की बात आती है। जो अनादि से उसमें कारण क्या होगा, तो कहते अहेतुक। और तीसरा पॉइंट, जे अन्य कोई द्रव्यमान नथी यानी असाधारण, एवं ज्ञान स्वभाव ने ज उपादेय करीने यानी वो स्वभाव का आलंबन लेके यानी उसी में एकाग्र होकर, केवल ज्ञान ने उत्पत्ति ना बीजभूत यानी केवल ज्ञान जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसका बीजभूत क्या है, जैसे बीज बोने से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका बीजभूत क्या था, तो कहते शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान नामना स्वसंवेदन ज्ञान है। स्वसंवेदन अपने आत्मा का ही अनुभव करते हुए जो ज्ञान वहां उसी में एकाग्र हो गया, उसी को जानते रहा, अपने स्वभाव को ही जानते रहा, तो कहते उस ज्ञान के द्वारा स्वसंवेदन ज्ञाने जारे आत्मा परिणमे छे, यानी आत्मा उस ज्ञान रूप परिणमित हुआ, त्यारे तेना निमित्ते। अब यह निमित्त कहा, क्योंकि अभी जो बताने वाले हैं वो कर्मों की बात बताएंगे, तो आत्मा के कारण कर्म में कुछ हुआ ये कैसा कथन है, तो निमित्त का कथन है। तो जीव ने क्या किया, अपने शुद्धात्म स्वभाव में वो लीन हो गया है, जिसे ज्ञान स्वभाव में वो लीन हो गया है, जिसको हम शुक्ल ध्यान कहते हैं, त्यारे तेना निमित्ते सर्वघाती कर्मों नो क्षय थी जाए। हम उपादान से निज शक्ति से बात करेंगे तो पुद्गल अपनी शक्ति से कर्म रूप परिणमा था, अभी वो अपने स्वयं के कारण वो अकर्म रूप होकर निकल गया, परंतु यहाँ जीव का और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना है। जब यहाँ जीव ने शुक्ल ध्यान रूप यहाँ ध्यान चालू किया, स्वसंवेदन ज्ञान किया, तो उसके निमित्त से वहां पर जो कर्म थे ज्ञानावरण वो संपूर्ण नष्ट हो गए, अकेला ज्ञानावरण ही नहीं सभी चारों घाती कर्म, इसलिए कहते सर्व घाती कर्मों। आपको घाती कर्मों के नाम मालूम है? हाँ हाँ, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणीय, हाँ मोहनीय और अंतर है। हाँ ये चार घाती कर्मों का क्षय हो जाता है, क्षय थी जाए छे, अने ते क्षय थवाना समय ज, एक ही समय यानी उस कर्म का क्षय हुआ और उसी समय क्या हुआ, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो। जीव की पर्याय की बात करेंगे तो मति ज्ञान आदि अल्प ज्ञान का क्षय हुआ यानी व्यय हुआ और केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। और यहाँ कर्म और जीव में संबंध बताना है, तो उसी समय क्षय थवाना समय आत्मा स्वयमेव केवल ज्ञान रूपे परिणमवा लागे छे। ये आत्मा की अपनी निज शक्ति है कि वो केवल ज्ञान रूप से परिणमता है। वो कर्म गए इसलिए उसके मेहरबानी से आत्मा में केवल ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। ते केवल ज्ञानी भगवान क्षौपशमिक ज्ञान वाला जीवनी माफक। एक क्षौपशमिक ज्ञान कब तक होता है सपना? क्षौपशमिक ज्ञान समझते हैं? केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहते हैं, क्यों? वहां ज्ञानावरण के सभी पांचों ज्ञानावरण का क्षय हो जाता है, इसलिए उस ज्ञान को कर्म की तरफ से नाम क्या पड़ा? क्षायिक ज्ञान। उसी को हम अनंत ज्ञान कहते हैं, उसी को केवल ज्ञान कहते हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब तक बारहवें गुणस्थान तक के जीवों का कौन सा ज्ञान होगा? वो क्षौपशमिक ज्ञान। तो क्षौपशमिक ज्ञान मिथ्या दृष्टि के होता है कि सम्य दृष्टि के होता है? सबको होगा ना। मिथ्या दृष्टि का कौन सा है? मिथ्या ज्ञान है, कुमति कुश्रुत और कुअवधि, जिसको विभंग ज्ञान कहते हैं, वो भी क्षौपशमिक अज्ञान जिसको कहेंगे हम, मिथ्या ज्ञान। सम्य दर्शन होने पर वो सुमति सुश्रुत सुअवधि, और फिर मुनियों को किसी को मनपरि ज्ञान भी है। तो ये चारों ही ज्ञान या तीन कु ज्ञान ये सब कैसे है? क्षौपशमिक ज्ञान। जब केवल ज्ञान होगा तो कौन से ज्ञान का अभाव होगा? क्षौपशमिक ज्ञान का अभाव होगा कौन सा? वो सुमति श्रुत वगैरह है ना। कुमति तो कब से निकल गए? जब सम्यक दर्शन हुआ तो कुमति नहीं रही, परंतु जब केवल ज्ञान हुआ उसके पूर्व पर्याय में क्या था? क्षौपशमिक ज्ञान था। देखो फिर से, ते केवली भगवान क्षौपशमिक ज्ञान वाला जीवोनी माफक अवग्रह इहा अवाया ने धारणा रूप क्रम थी जानता नहीं। क्योंकि जो मति ज्ञान है, सभी जीव तो मति शुद्ध ज्ञान वाले तो होते ही होते हैं, और शुद्ध ज्ञान तो मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए पहले क्या होगा? मति ज्ञान होगा। और मति ज्ञान में क्रम कौन सा होता है? अवग्रह इहा अवाय और धारणा। अवग्रह ने फॉरमोस्ट, सबसे फर्स्ट जो कुछ इम्प्रेशन जो कुछ जानना होता है उसको कहेंगे अवग्रह। फिर बाद में वो चीज कौन सी वो नक्की करने जाता है जीव, उसके बारे में और कंफर्म करने के लिए ज्ञान आगे बढ़ता है, उसको कहते ईहा। अब निश्चित हो जाता है यही ये वस्तु है तो उसको अवाय कहेंगे। और वो कालांतर भी नहीं भूलता है, जिसको हम कहते हमने वो सेव कर दिया अपने ज्ञान में, तो उसको धारणा कहते। तो ये तो मति ज्ञान में, क्षौपशमिक ज्ञान में इसका क्रम पड़ता है, केवल ज्ञान में ऐसा क्रम नहीं है। वो डायरेक्ट एक ही समय में युगों पर सब कुछ जान लेते हैं, यही कह रहे क्रमति नहीं जानता, परंतु सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भावने। सर्वद्रव्य क्षेत्र, सभी द्रव्यों के सभी यानी क्षेत्रों को जानेंगे, सभी वो अनादि अनंत काल को जानेंगे, सभी के भावों को जानेंगे। और कैसे जानेंगे? तो युगपद एट ए टाइम जानेंगे। ए रीते तेमने बधुए प्रत्यक्ष वर्ते छे। बधुए ने सभी द्रव्यों के सभी गुण पर्याय सभी सभी कुछ एट ए टाइम जानते हैं। अब ये हो गई अभी जैसेनाचार्य की टीका भी हम पढ़ेंगे, आपको जैसेनाचार्य की पुस्तक भी दी है नीचे, क्योंकि उनकी टीका उसमें नहीं होगी मूल पुस्तक में, है क्या? जैसेनाचार्य की टीका है? है अच्छा हाँ है चलो अच्छी बात है। इसमें अर्थ सहित होगी, परंतु ये जो घोटाले है इसमें ज्यादा। हाँ अभी हम पढ़ेंगे, देखो पेज नंबर एक, ये लाइन के नीचे, एवं अनंत ज्ञान सुख स्थापने प्रथम गाथा, केवली भुक्ति निराकरणे द्वितीय गाथा, चेती गाथा द्वयम गतम। भी जो दो गाथाएं गई उसकी बात बताई है कि अनंत ज्ञान और अनंत सुख उसकी स्थापना करने के लिए एक गाथा हुई, और केवली भुक्ति यानी केवली को वो कवलाहार नहीं होता, भोजन नहीं लेते, उसके बारे में बहुत विस्तार से अपनी चर्चा हुई थी कल। हाँ उसका निराकरण करने वाली, केवल ज्ञानी के यानी भोजन वगैरह आहार वगैरह नहीं होता है, उसका निराकरण किया, कोई लोग मानते हैं, उसके लिए दूसरी गाथा गई, ऐसे दो गाथाएं गई। इति गाथा सप्त गाथा भी, मिही नहीं भी चाहिए, यानी सात गाथाओं के द्वारा। सप्त गाथा भी स्थल चतुष्टय यानी चार स्थलों में, यानी सात गाथाओं में चार स्थल हो गए। सामान्य न सामान्य से सर्वज्ञ सिद्धि नामा द्वितीय अंतराधिकार समाप्त है, जो समाप्त हुआ। देखो जैसे नाचार्य की विशेषता है, नया अधिकार शुरू होता है तो कौन सी अधिकार गया, उसमें क्या आया था और आने वाले अधिकार में क्या आने वाला है, ये सब बातें बताते, वो समुदाय पातनिका कहते उसको। ये दूसरा अधिकार हुआ जिसमें सर्वज्ञ सिद्धि नाम का दूसरा अधिकार समाप्त हुआ। अथ अथ का अर्थ थे अब, यहाँ आने वाला विषय बता रहे। ज्ञान प्रपंचा विधानांतराधिकारे, ज्ञान प्रपंच ने ज्ञान का विस्तार, अभिधान ने नाम, ज्ञान प्रपंच नामक अंतर अधिकार। एक होता है महाधिकार ने मेन चैप्टर, अंतर अधिकार ने उसके डिविजन्स सब डिविजन्स, उसके अंतर्गत यह आने वाला वो अंतर अधिकार कहेंगे। तो ज्ञान प्रपंच अभिधान अंतराधिकारे त्रयस्त्रिंशत गाथा भवंती, यानी 33 गाथाएं होगी इसमें, 33। तत्र अष्टौ स्थलानि, उसमें आठ स्थल है। तेषु आदौ, उसके स्टार्टिंग में, आदौ यानी आदि में, केवल ज्ञानस्य सर्वं प्रत्यक्षं भवति इति कथन मुख्यत्वेन, यानी केवल ज्ञानी के सब कुछ प्रत्यक्ष होता है, इस कथन की मुख्यता से परिणम दो खलु। अभी जो हमने गाथा पढ़ी ना, उसके स्टार्टिंग के दो तीन शब्द बताते हैं, तो परिणम दो खलु इत्यादि गाथा द्वयम्, दो गाथाएं आने वाली है उसके लिए बताएंगे। अथ आत्मज्ञानयोः निश्चयेन असंख्यात प्रदेशत्वेपि व्यवहारेण सर्वगतत्वं भवति। क्या कहते हैं, आत्मा और ज्ञान निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा क्यों? आत्मा कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। और उसका केवल ज्ञान दक्षाबेन अनंत प्रदेशी, क्योंकि पूरे लोकालोक को जानता है ना। आप क्या कहते हैं? देखो देखो, हमने जब पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, गुणों की परिभाषा याद है आपको? गुण हाँ, द्रव्य के पूरे भाग में। देखो अगर हम द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, काल और भाव, किसी भी द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव होता है। अब हम जीव द्रव्य की बात करते हैं, जीव द्रव्य तो जाहिर है उसका जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी, वो उसका क्षेत्र हुआ। जीव द्रव्य कब से कब तक है? तो अनादि अनंत है, वो उसका काल हुआ। और भाव में जीव द्रव्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हम उसके भाव में लिखेंगे, यानी जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र वगैरह जो अनंत गुण है, विशेष गुणों की बात है, वो उसके भाव में दे दी है, क्योंकि उसके द्वारा हम जीव को पहचानते हैं। अभी उसका ये तो हमने जीव द्रव्य लिया यानी आत्मा, अभी उसका ज्ञान नाम का गुण, ज्ञान गुण कौन से द्रव्य में है? जीव द्रव्य में, यानी ज्ञान का द्रव्य कौन सा है? तो जीव द्रव्य। ज्ञान गुण का क्षेत्र कितना है? केवल ब्रेन में है ना, कहाँ पर है ज्ञान गुण? कहाँ पर है? ब्रेन में है कि हार्ट में? हार्ट में। गुडनेस। हाँ, जीव के असंख्यात प्रदेश है, ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट में है और बाकी में नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जीव के बाहर भी फैलेगा नहीं, हमें यहाँ उसका ऐसा कोई चित्र के ऐसा कुछ किरणें वगैरह दिखाते हैं किसी महापुरुष के तेजो वाले, ऐसा कुछ ज्ञान बिन बाहर नहीं आता, कुछ नहीं आता उसका। तो कहते उसका क्षेत्र भी असंख्यात प्रदेशी है। और गुण का काल कितना होगा? अनादि अनंत। क्यों? द्रव्य का और उसका कैसा संबंध है? नित्य तादाद में हमको ये सब डिराइव करना आना चाहिए। और ज्ञान गुण का भाव क्या है, वो स्वपर प्रकाशक शक्ति जिसमें है वो तो ज्ञान गुण है, उसका भाव होगा। अभी हम ज्ञान की पर्याय लेंगे, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान का द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। केवल ज्ञान कितने क्षेत्र में व्याप्ता है? हाँ, पूरे लोक में जाएगा ना, सब जगह जानने के लिए नहीं तो आप रोड को जानते हैं, वहां से यहाँ खिड़की में खड़े रहकर, तो आपका ज्ञान पूरे रोड में फैलता होगा कि नहीं? नहीं तो क्या होता है? अपने में रहकर सबको जानने की जीव की ये विशेषता है। उसका कोई गुण बाहर नहीं जाता, ना उसके पर्याय बाहर जा सकते। तो केवल ज्ञान हम किधर, इतना महान है केवल ज्ञान, क्योंकि उसको व्यवहार से वो सर्वगत भी कहेंगे, वो बात बताएंगे अभी, इसीलिए मैंने ये प्रश्न उठाया। तो केवल ज्ञान हो या मति ज्ञान हो, हमारी तो अल्प ज्ञान है, तो हमारा तो थोड़ा क्षेत्र में होगा और केवल ज्ञान बहुत क्षेत्र में होगा, बराबर है ना? क्या मालूम, आपको मालूम करना पड़ेगा। जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा गुण, उतनी बड़ी उसकी पर्याय, भले एक समय पूर्ति है पर उतनी बड़ी है, पूरे द्रव्य में पूरे क्षेत्र में व्याप्ति है। ज्ञान की हमारी मति ज्ञान की पर्याय पूरे क्षेत्र में। अब चारित्र गुण का क्रोध चल रहा है, तो क्रोध खाली मुंह में और आंखों में और इसमें बड़ा पड़े, पूरे असंख्यात प्रदेशों में क्रोध होगा, भले विभाव पर्याय हो या स्वभाव पर्याय हो। जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा गुण, उतनी बड़ी उसकी पर्याय है। यानी वो केवल ज्ञान निश्चय से कितना है? असंख्यात प्रदेश है। यहाँ क्या लिखा देखो, अथ आत्म ज्ञान यो हो, आत्म ज्ञान नहीं लेना, आत्मा और ज्ञान, यो हो यानी दो विवचन शब्द है, दोनों में, आत्मा और ज्ञान दोनों का, दोनों में या दोनों, आत्मा और ज्ञान ये दोनों निश्चय न असंख्यात प्रदेशत्व भी, ये दोनों कैसे निश्चय से असंख्यात प्रदेशी होने पर भी व्यवहार है ना, व्यवहार से ने उपचार से सर्वगतत्वम भवति, वो सर्वगत होता है। सर्वगत क्यों? सबको जानते हैं, लोक अलोक सबको जानते हैं, इसलिए केवल ज्ञान को सर्वगत कहते हैं। वो बात आएगी कि ज्ञान कितना है तो ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय कितना है तो लोकालोक है, और इसलिए वो क्या है तो सर्वगत है, इस तरह से आएगी बात। इत्यादि कथन मुख्यतः, इत्यादि कथन की मुख्यता से आदा नान प्रमाणम, जो है ना आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, वो गाथा आने वाली है। इत्यादि गाथा पंचकम, पांच गाथाओं के द्वारा वो विषय समझाएंगे। ततः परम, उसके बाद ज्ञान ज्ञेय यो हो, अभी दो कौन सी बातें, ज्ञान और ज्ञेय, ये दो बातें। परस्पर गमन निराकरण मुख्यतया, यानी ज्ञान ज्ञेय में जाता है, ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश करता है, इसका निराकरण कर रहे हैं। हम कहते हैं आपके समझ में आया, कहते हम हमारी समझ में आया, आपके ज्ञान में आया, हमारे ज्ञान में आया, तो आपके ज्ञान में घुस गया हमने जान लिया, हमने आपको बताया ये क्या है, तो आपने कहा ये पेन है, तो आपने जाना ना इसको, जाना, तो इसमें से कुछ आपके ज्ञान के अंदर घुस गया? ये तो बाहर की चीज बाहर है, वो अपने में, उसके अपने क्षेत्र को लिमिटेड है, वो उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी है, परंतु ज्ञान ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी है, तो ज्ञान ने उसको सभी विशेषताओं को जान लिया है। ये ज्ञान की विशेषता है, यानी वो उसका स्वभाव ही है कि सब कुछ जान ले, इसलिए यह कहते ज्ञान और ज्ञेय परस्पर में प्रवेश नहीं करते। परस्पर गमन निराकरण, परस्पर में गमन करते हैं, इस मान्यता का निराकरण करते हैं, उसको रूल आउट करते हैं। उसकी मुख्यता से नानी नान सहा, वो इत्यादि गाथा पंचकम और पांच गाथाओं के द्वारा वो विषय समझाएंगे। देखो देखो, ज्ञेय स्व भी होता है और पर भी होता है। ज्ञान तो मेरे अपेक्षा से मेरा ज्ञान स्व है, आपका ज्ञान मेरे लिए पर होगा कि नहीं होगा, पर हम जानने वाला वो ज्ञान वो हम स्व कहेंगे, तो वो ज्ञान ज्ञान को भी जानेगा और पर चीज को भी जानेगा कि नहीं जानेगा, तो उसके लिए ज्ञेय दो होते, स्व और पर, इसीलिए ज्ञान को स्व पर प्रकाशक कहा। ज्ञान अपने को भी जानता है और ज्ञान जो जानने में आ रहे पर वस्तु उसको भी जान लेता है। देखो बिल्कुल दोनों एक ही समय में जानेंगे, स्वपर प्रकाशक एट ए टाइम ही होता है दोनों। नहीं तो वो स्वभाव कैसा होगा, क्रमिक जानने वाला ऐसा स्वभाव हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं, हाँ ये नानी वगैरह हो गए, अथ उसके बाद निश्चय व्यवहार केवली प्रतिपादनादि मुख्यत्वेन, यानी केवल केवली का जो प्रतिपादन है वो निश्चय से केवली का कथन और व्यवहार से उनका कथन इत्यादि मुख्य मुख्यता से, जो ही सुदेन इत्यादि सूत्र चतुष्टय, चार सूत्रों के द्वारा आगे बताए हैं। अथ उसके बाद वर्तमान ज्ञाने कालत्रय पर्याय परिच्छित्ति कथनादि रूपेण तत्कालिगेव सौवे, कालत्रय ने तीनों काल, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, कालत्रय पर्याय परिच्छित्ति यानी तीनों काल के पर्याय उनका ज्ञान, परिच्छित्ति यानी उसका ज्ञान उसको जानना, उसके कथन रूप से आगे के पांच सूत्र आ जाएंगे। अथ उसके बाद केवल ज्ञानम बंध कारणम न भवति रागादि विकल्प रहितम छद्मस्थ ध्यान ज्ञानम अपि, क्या कहते हैं केवल ज्ञान तो बंध का कारण नहीं है, तो छद्मस्थ ज्ञान तो बंध का कारण होगा, तो कहते नहीं रागादि विकल्प रहित छद्मस्थों का ज्ञान भी बंध का कारण नहीं है, नहीं है आप पढ़ो ना उसमें, केवल ज्ञानम बंध कारणम न भवति, कहते रागादि विकल्प रहित छद्मस्थ ज्ञानम अपि यानी अपि न भवति बंध कारणम न भवति, किंतु अभी परंतु रागादयो बंध कारणम, बंध का कारण क्या है, रागादि ही बंध का कारण है। देखो ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का एक ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य का, उसमें भी उन्होंने तीन तीन श्लोक लिखे, क्या लिखा कि जितने श्रद्धान है उससे बंध नहीं है, जितना राग है उससे बंध है, जितना ज्ञान है उससे बंध नहीं है, जितना राग है उससे बंध है, इस तरह से ये तीन गाथाओं में वही बताते कि जितना राग है उतना बंध है। आओ आप यहां बैठना, उसकी मुख्यता से इत्यादि निरूपण मुख्यता कथन की मुख्यता से परिणाम निर्णयम इत्यादि सूत्र पंचकम। अथ केवल ज्ञानम सर्वज्ञानम सर्वज्ञत्वेन प्रतिपादयति इत्यादि व्याख्यान मुख्यत्वेन जम तत्कालियम इदरम इत्यादि गाथा पंचकम, यानी सर्व केवल ज्ञान है वो सर्व ज्ञान है, क्यों वो सर्वज्ञता होने से। अथ ज्ञान प्रपंच उपसंहार मुख्यत्वेन प्रथम गाथा, यानी ज्ञान प्रपंच का जो उपसंहार करेंगे अभी समेटेंगे, पहले तो विस्तार से बताया तो वहां पर एक गाथा है, नमस्कार कथन है ना द्वितीया और नमस्कार के कथन से दूसरी गाथा, चेति नवी परिणमी इत्यादि गाथा द्वयम, वहां दो गाथाएं आएगी, एवं ज्ञान प्रपंच अभिधान तृतीय अंतराधिकारे त्रयस्त्रिंशत गाथा भी स्थल अष्टकेन समुदाय पातनिका है, यानी इस तरह से वो कितनी गाथाओं क्या क्या वो सब उन्होंने विस्तार से उसका कथन किया है। ये त्रयस्त्रिंशत कितना हुआ वो, हाँ नहीं 33 नहीं ज्यादा होगा ना, 33 हो गया, पहले दो गाथा आई फिर पांच, दो फिर पांच, फिर पांच, पांच पांच की बात है, फिर सूत्र चतुष्टय आया, फिर सूत्र पंचक आया, हाँ गाथा पंचम, फिर पांच आया, फिर ये दो, हाँ पांच पांच में चौक 20, 20 शनि 8 28 हाँ यानी 33 होगी सब मिलकर आगे होगी। इसको समुदाय पातनिका कहते। तद यथा अभी इस गाथा का विषय बता रहे। अथ अतीन्द्रिय ज्ञान परिणतत्वात् केवलिनः सर्वं प्रत्यक्षं भवति इति प्रतिपादयति। हमने जो जैसे अमृत चंद्राचार्य की टीका में पढ़ा था ना अभी क्या कहा था उन्होंने कि केवल ज्ञान कैसा है अतीन्द्रिय ज्ञान है। इंद्रियों के द्वारा वो ज्ञान नहीं होता है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहां पर वो अवग्रह इह अवाय धारणा वगैरह क्रम होता है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है आत्मा स्वयं अपने से ही आत्म प्रदेशों के द्वारा डायरेक्ट जान लेता है प्रत्यक्ष जान लेता है तो वहां ये क्रम नहीं होता एक बात और सब कुछ प्रत्यक्ष होता है उनके कुछ बाकी रहा जानने में ऐसा नहीं है। केवल सामने वाली चीजों को जानेंगे दूर की नहीं जानेंगे ऐसा भी नहीं है। वर्तमान को ही जानेंगे भूत भविष्य को नहीं जानेंगे ऐसा भी नहीं है। यानी उसमें कोई मर्यादा नहीं है ना काल की मर्यादा है ना कोई क्षेत्र की मर्यादा है। जो कुछ है वो सब कुछ उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष हो जाता है। अब गाथा के शब्द लेकर बताएंगे। पच्चखा सौव दौव पज्जाया यानी सर्व द्रव्य पर्याया प्रत्यक्षा भवंती सर्व द्रव्य पर्याय उनके प्रत्यक्ष होते हैं। कस्य किसके केवली ना है यानी केवली के किम कुर्वतः क्या करते हुए है वो केवली परिणम दो परिणम मानस्य यानी परिणमते हुए खलु यानी स्फुटम खरेखर किम नानम यानी ज्ञान रूप परिणमते हुए अनंत पदार्थ परिच्छित्ति समर्थ केवल ज्ञानम केवल ज्ञान कैसे है अनंत पदार्थों को जानने में समर्थ है परिच्छित्ति यानी जानना। तरही किम क्रमे न जानाती तो कहते कि वो किस क्रम से जानते हैं कि सोनेव ते विजानदि उग्गह पूवाहि क्रियाहि स च भगवान नैव तान जानाति अवग्रह पूर्वाभि क्रियाभि यानी भगवान जो है उन पदार्थों को अवग्रह आदि क्रियाओं से नहीं जानते। जैसे क्षौपशमिक ज्ञानी है वो क्रम से जानते हैं उसमें पहले अवग्रह यहाँ अवाय वगैरह बातें होती है वैसे केवल ज्ञानी नहीं जानते वो डायरेक्ट एक समय में सब कुछ जान लेते हैं। किंतु युगपत इति अर्थ है युगपत यानी एट ए टाइम सब कुछ अनादि अनंत एट ए टाइम जान लेते हैं। अभी देखो कैसा ज्ञान जैसा दिव्य होगा कि अनंत द्रव्य है और उनकी अनादि अनंत पर एट ए टाइम एक द्रव्य के भी एट ए टाइम जानो तो कितनी बात हो जाएगी। अब ये तो अनंत द्रव्य और उनके अनादि अनंत पर्याय सब कुछ एक समय में जान रहे यानी हम तो वो कैसे जानते हो कि इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जानना क्रम से होता है। ये तो विस्तार अभी उसी का विस्तार करके समझाएंगे स्पष्टीकरण। अनादि अनंतम अहेतुकम अभी हमने देखा था अमृतचंद्राचार्य की टीका में भी ज्ञान स्वभाव कैसा है तो अनादि अनंत स्वभाव हमेशा अनादि अनंत होता है। और कैसा होता है अहेतुक स्वभाव में कोई कारण नहीं है जिसका जो स्वभाव है वो अनादि से विद्यमान है किसी कारण वो स्वभाव बना ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिदानंद एक स्वभावम निज शुद्धात्मानम उपादेयम कृत्वा यानी अनादि अनंत अहेतु कैसे चिदानंद एक स्वभाव जो निज शुद्धात्मा है उसी को उपादेय करके यानी उसी को उसी में एकाग्र होके उसी को मुख्य करके केवल ज्ञानोत्पत्ते है बीज भूते न यानी केवल ज्ञान की उत्पत्ति में जो बीज भूत है यानी उसका जो ओरिजिनल कारण है आगम भाषया आगम की भाषा में शुक्ल ध्यान संज्ञेन उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं संज्ञा ने नाम उसका नाम है शुक्ल ध्यान। रागादि विकल्प जाल रहित स्व संवेदन ज्ञानेन दूसरा नाम क्या है उसका रागादि विकल्प रहित स्व संवेदन अपने आत्मा को जानने वाला आत्मा का अनुभव है उस ज्ञान से स्वसंवेदन ज्ञानेन यदा अयम आत्मा परिणमति, जब यह आत्मा परिणमित होता है, तदा तब स्वसंवेद ज्ञान फलभूत केवल ज्ञान परिच्छित्ति आकार परिणतस्य तस्मिन् एव क्षणे, क्या कहते हैं, जब केवल ज्ञान के बीजभूत जो शुक्ल ध्यान नामक जो रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान से जब यह आत्मा परिणमित होता है, तब क्या होता है, तदा स्वसंवेद ज्ञान फलभूत, पहले बीजभूत कहा था, अभी इसका फल क्या मिलेगा, स्वसंवेदन ज्ञान ने आत्मा की अनुभूति शुद्ध उपयोग में वो स्थित है, उसके फलभूत क्या होता है, केवल ज्ञान परिच्छित्ति आकार परिणतस्य, आकार ने ज्ञानाकार जिसको हम कहने केवल ज्ञान रूप से जो परिणमित हुआ है, तस्मिन् एव क्षणे उसी क्षण में उसी समय में क्रम प्रवृत्त क्षावक्षमिक ज्ञानाभावात, ज्ञानाभावात यानी ज्ञान अभावात, पहले हमने देखा था क्षावक्षमिक ज्ञान कौन से है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मने परि ज्ञान, उसी समय उसका व्यय हुआ उसका क्षय हुआ उसका नाश हुआ और केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, जैसे हम कहते अंधकार था और प्रकाश हुआ, तो पहले अंधकार गया कि पहले प्रकाश आया, क्या कहते सेम सेम समय हम कहते उत्पाद, पहले ये गाथा गई थी अपनी पहले भाग में, उत्पाद व्यय और ध्रुवता, जिस समय नए पर्याय का उत्पाद है पूर्व पर्याय का व्यय उसी समय, ऐसा नहीं कि एक समय के लिए व्यय हुआ फिर कुछ नहीं था फिर जाके दूसरा उत्पाद हुआ, ऐसा नहीं होता है, यही कह रहे उसी क्षण क्षावक्षमिक ज्ञान का अभाव हुआ, अभावात अक्रम समाक्रांत समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावतया, यानी पहले कैसा था क्रमिक ज्ञान था, अब कैसा हुआ अक्रम यानी युगपत एट ए टाइम, सभी द्रव्यों के सभी अनादि अनंत पर्यायों को युगपत यानी एट ए टाइम एक समय में सब कुछ जान लेते, उसको अक्रम कहा, समाक्रांत समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावतया, अने सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समाक्रांत कर लिया, सभी को जान लिया, सर्व द्रव्य गुण पर्याय अस्य आत्मनः प्रत्यक्षा भवन्ति इति अभिप्राय, अने इस आत्मा के सभी द्रव्य गुण पर्याय प्रत्यक्ष हो जाती है यानी उनके जानने में आती है। अब यहाँ तक तो हमने संस्कृत टीका जयसेनाचार्य की पढ़ी, अभी गुरुदेव के जो प्रवचन है उसको यहाँ से पढ़ेंगे, पेज नंबर 3। वो परिणाम मानस से वो क्या परिणाम मानस से करना था, हाँ हाँ 3 नंबर का पृष्ठ है ये दूसरी पुस्तक के प्रवचन सार 21वीं गाथा। हवे ज्ञानना स्वरूपनो विस्तार अने सुखना स्वरूपनो विस्तार वे अधिकार चाल से, एक के बाद एक अधिकार आने वाले हैं, दो अधिकार है, यथार्थ ज्ञान एटले के केवल ज्ञान शू छे अने पूर्ण सुखनु स्वरूप शू छे, क्योंकि हम कहते हैं अनंत ज्ञान और अनंत सुख वो क्या बात है उसकी बात अभी यहाँ बताएंगे। तेनो क्रमे प्रवर्तता अर्थात पहला ज्ञान स्वरूप नो विस्तार करशे पछी सुख स्वरूप नो विस्तार करशे, क्योंकि दो अधिकार कैसे क्रमे प्रवर्तता, क्रम से आने वाले दो अधिकार है, क्रमे प्रवर्तता नो अर्थ छे अधिकार, क्रमे प्रवर्तता के छे, यानी एक के बाद एक इनके चैप्टर्स आने वाले हैं, पहले ज्ञान वाला और फिर सुख के बारे में, ज्ञान अने सुख क्रमे प्रवर्तता एम नहीं, क्या कहा सपना ख्याल में आई भाई, पहले ज्ञान होगा बाद में सुख होगा कि नहीं, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वही अतीन्द्रिय सुख है, एट ए टाइम है दोनों, परंतु उसका कथन में भेद पड़ेगा कि नहीं, कथन में क्रम है, पहले ज्ञान का कथन करेंगे बाद में सुख का करेंगे, उसमें क्रम है, यही कह रहे हैं, क्या कहा ज्ञान ने सुख क्रम में प्रवर्तता एम नहीं, ज्ञान और सुख दोनों एट ए टाइम है, परंतु अभी वर्णन करने में तो उसको क्रम पड़ेगा कि नहीं, एट ए टाइम कह नहीं सकते, ये तो अक्रमे साथेज वर्ते छे, अधिकार मा पहलो ज्ञान नो अधिकार पची सुख नो अधिकार कहे छे, कथन में क्रम होता है, એ અધિકારો દ્વારા કહે છે. તેમાં પ્રથમ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન રૂપે પરિણમેલા હોવાથી અબ કેવલ જ્ઞાની કહેશે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન રૂપ પરિણમિત હુએ હે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અભી નહીં રહા, શવ શબ્દ જ્ઞાન નહીં રહા. અર્થાત કેવળ જ્ઞાની ભગવાન અતિન્દ્રિય જ્ઞાનપણે પરિણમેલા હોવાથી અતિન્દ્રિયની ઇન્દ્રિયો સે અતીત હો ગે, અભી અપાર હો ગે, કેવળી ભગવાનને બધું પ્રત્યક્ષ છે એમ પ્રકટ કરે છે. આત્માની જ્ઞાન પર્યાય જેને પૂર્ણ પ્રકટ થાય એને બધું પ્રત્યક્ષ છે એવું એનું સામર્થ્ય છે. સામર્થ્ય તો આનાથી વિદ્યમાન થા દ્રવ્ય મેં સામર્થ્યથી, પણ પર્યાય મેં કબ પ્રકટ હોય કેવલ જ્ઞાન હોને પર. એ ગાથા તો અમને પઢી હતી, અબ ટીકા કે ઉપર પ્રવચન એ ગાથા કે નીચે વહાં સે પડતે હૈ. ઇન્દ્રિયોને આલંબીને અવગ્રહ ઇહા અવાયપૂર્વક ક્રમથી કેવળી ભગવાન જાણતા નથી તો કોણ જાણે છે મનીષાબેન? હા, હમ આપ કૈસે જાણતે હૈ? ઇન્દ્રિયોને આલંબીને અવગ્રહ ઇહા અવાય ધારણાપૂર્વક જાણતે. હા, હમારા જ્ઞાન કૈસા હૈ? ઇન્દ્રિય જ્ઞાન હૈ, ક્ષૌષમી જ્ઞાન હૈ, એ હમારે જ્ઞાનમાં એ ક્રમ પડતા હૈ. પરંતુ કેવલી એસે ક્રમ સે નહીં જાણતે, ઉનકે તો એક સમય મેં હોતા હૈ. અભી અવગ્રહ યહાં આવા બતાએ ના, વો ઇસકો એક એક કે લિયે અંતર્મૂર્ત અંતર્મૂર્ત લગેગા, અલગ અલગ ભલે છોટા હોગા પરંતુ હૈ તો અંતર્મૂર્ત જીતના એક મેં વો, ફિર અવાય કા પહેલે અવગ્રહ હોગા, ફિર યહાં, ફિર અવાય, ફિર ધારણા. ત્રણ કાળના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને ઇન્દ્રિયને અવલંબીને જાણતા નથી, એટલે કે પ્રથમ અવગ્રહ થાય પછી વિચારણા થાય. વિચારણા ને વો તો ઉસકે બારે મેં ક્યાં હૈ વો વિચાર આતે હૈ ના, કે કોણ સી વસ્તુ હૈ, નિર્ણય કરને જાતે હૈ, પછી નિર્ણય થાય. એ વિચારણા થાય વો ઇહા, ઓર નિર્ણય થાય વો અવાય. એવા ક્રમથી કેવળી ભગવાન જાણતા નથી પરંતુ સ્વયમેવ સમસ્ત આવરણના ક્ષયની ક્ષણે જ, સમસ્ત આવરણ એને જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ કા પૂર્ણ ક્ષય હો ગયા હૈ, ઉસી ક્ષણ સમસ્ત ઘાતી આદિ આવરણના ક્ષયની ક્ષણે, ઘાતી એટલે જ્ઞાનાવરણની આદિ અનાદિ અનંત, હવે કેવળ જ્ઞાન કેમ ઉત્પન્ન થયું એમ કહે છે. એ અનાદિ અનંત અહેતુ કિસકે લીએ બતાયા તા? કેવળ જ્ઞાન કે લીએ, જ્ઞાન સ્વભાવ, સ્વભાવ અનાદિ અનંત. કેવળ જ્ઞાન કી તો આદિ હોગી, સાદી કહેંગે, કેવળ જ્ઞાન નહીં થા વો ઉત્પન્ન હુઆ હૈ, પણ જ્ઞાન સ્વભાવ કાયમ અનાદિ સે થા. હમારા અભી જો જાણને જાણના ચલ રહા હૈ તો હમારા જ્ઞાન સ્વભાવ ઇસલિયે જાણના હો રહા હૈ. હા, પરંતુ સ્વભાવ કા હમને લક્ષ્ય નહીં કિયા હૈ, સ્વભાવ મેં સ્થિરતા નહીં કી હૈ તો એ અલ્પ જ્ઞાન રૂપ પરિણમિત હો રહે, પણ જીતના ભી જાણના હો રહા હૈ વો સ્વભાવ કે કારણ હો રહા હૈ. કર્મો કા ક્ષયોપશમ હુઆ, જો કુછ હલકા હુઆ ઇસલિયે હમારે જ્ઞાન બઢ ગયા, એસા કુછ નહીં હૈ. જો જાણના હોતા હૈ વો સ્વભાવ કે કારણ. અબ કેવલ જ્ઞાન કહે છે જૈસા સ્વભાવ પૂર્ણ હૈ સામર્થ્ય, વો પૂરા કા પૂરા સામર્થ્ય પર્યાય મેં પ્રકટ હુઆ હૈ, ઇસલિયે જૈસા સ્વભાવ હૈ વૈસા વો કેવલ જ્ઞાન ભી પર્યાય મેં પરિણમિત હુઆ હૈ. યહી કહે રહે કે અભી એ સ્વભાવ કી બાત કર રહે યહાં પર. યે સ્વભાવ કૈસા હૈ? અનાદિ અનંત, અહેતુક અને અસાધારણ, ક્યુંકી જ્ઞાન સ્વભાવ અન્ય દ્રવ્ય મેં નહીં હૈ, જીવ કે લિયે અસાધારણ હૈ. જ્ઞાન સ્વભાવાન સ્વભાવને જ કારણપણે ગ્રહવાથી અને ઉસી મેં એકાગ્ર હો ગયા હૈ, ઉસી કા અવલંબન લિયા હૈ. જૈસે નાચાર્ય દેવની ટીકામાં અનાદિ અનંત આત્મા લીધો, અહીં અમૃતચંદ્રાચાર્યની દેવની ટીકામાં જ્ઞાન લીધું, બધી એક જ વાત છે. હવે હમ યહી રુકેંગે, બાકી સોમવાર કો ચાવાણી કે જ્ઞાન તે સૂજે લો કાલો સોવાણી મસ્તકનમ સદા દેત હો. નલિનભાઈ.